ओम शांति। कहते हैं कि दीपक सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य उसका नहीं होता है। मूल्य रोशनी देना, अर्थात ये कहें कि अंधकार को दूर करने का मूल्य होता है। ऐसे ही हमारे बीच उपस्थित हैं बाप दादा के अति लाडले भाग्यशाली रतन कहें, जो अनेकों के अंधकार को दूर कर रोशनी देने वाले बाप दादा, जिसे कुल दीपक भी कहते हैं, ऐसे कुल दीपक राजू भाई, सभी एक हाथ हिला करके हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राजू भाई की विशेषताओं से आप परिचित होंगे। पहले तो बाबा की मुरली सिंपल इसी प्रकार से आती थी, हम खुद उसमें से प्रश्न, सार, धारणा, योग की पॉइंट्स अलग अलग निकालते थे, लेकिन जब से राजू भाई ने इस डिपार्टमेंट को संभाला है, तब से लेकर के राजू भाई की यह विशेषता रही कि सार क्या है, प्रश्न क्या है, धारणा क्या है, वो सारे विभाग अलग अलग करके मुरली में लिखते हैं, जिसे हर भाई बहन को आज हमें क्या धारणा करनी है, आज मुख्य मुरली का सार हमारी बुद्धि में क्या रखना है, वह स्पष्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता मुरली में ही आती है कि आप देखते हैं कि वरदान और स्लोगन लिखा हुआ था। अव्यक्त वाणियों का इतना अध्ययन करना और उनमें से फिर वरदान और स्लोगन को ढूंढना, वरदान का भी स्पष्टीकरण इतना स्पष्ट लिखा रहता है, तो बहुत सारी मेहनत करके राजू भाई हम सभी के आगे मक्खन रख देते हैं, बस आप मक्खन खाते रहो और स्वयं की आत्मा को हेल्दी बनाते रहो, इतना सारा तैयार करके हमें देते हैं। इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि राजू भाई के अंदर इतने ज्ञान रत्नों की विशेषता क्यों रही। वह भी इसलिए कि बचपन से लेकर के आपने बाबा को पहचाना, बाबा की इस ज्ञान को प्राप्त किया और 42 वर्षों से आप मधुबन में ही दादियों के साथ सेवा पर तत्पर रहे, दादियों की जीवन की धारणाओं को, दादियों के अनमोल महावाक्यों को सुनते सुनते आप भी एक ऐसे रत्न बन गए जो उन रत्नों को औरों को लुटाते रहते हैं। साथ साथ आप ग्राम विकास प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं और साथ साथ बच्चियां कराने के लिए जहां भी निमंत्रण हो वहां पर आप अवश्य जाते हैं, न सिर्फ भारत देश लेकिन विदेशों में भी। ग्राम विकास के प्रति आपकी एक बहुत अच्छी रुचि है कि योग के द्वारा खेती को किस प्रकार से, जिसे आजकल शब्द दिया जाता योगिक खेती, उसमें आपकी बहुत अच्छी रुचि भी है और आप उसमें मार्गदर्शन भी देते हैं। पर दाजू भाई से दो बातें मैं कहूंगी कि पहली बात कि योग की गहराई एवं उसका प्रयोग, इस विषय को स्पष्ट करें, उसके पश्चात थोड़ा सा समय योगिक खेती के ऊपर भी इन भाई बहनों को लाभान्वित करेंगे। राजू भाई।
ओम शांति। बाबा ने हम सबको सहज योगी बनाया है। कई बार बाबा कहते हैं योग शब्द कह करके भारी नहीं करो, योग शब्द तो हठ योगियों का है, आप बच्चे तो बाबा को याद करते हो, बाबा के प्यार में समा जाते हो, यही योग है। तो हम सभी यहाँ मधुबन के पवित्र वातावरण में योग के गहरे अनुभव कर रहे हैं। योग की गहराई क्या है, योग के प्रयोग क्या हैं। मैं समझता हूँ आप सबको इसके अनुभव होंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन जिस दिन से प्राप्त हुई, बाबा ने हम सबको दो शब्द वरदान रूप में दिए, पवित्र बनो योगी बनो। जितनी जितनी पवित्रता की गहराई को हम समझते गए, मन वचन कर्म से आत्मा स्वच्छ शुद्ध होती गई, उतना योग सहज होता गया, स्वतः होता गया। इसलिए योग की गहराई माना ही मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, अपने स्वरूप को पहचानना, और बाबा जो है जैसा है उस स्वरूप में उसका अनुभव करना। जब आत्मा का परिचय हम सबको मिला, आत्मिक स्थिति का अभ्यास हमने शुरू किया, तो अनुभव होने लगा ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। मैं समझता हूं जिस ब्राह्मण आत्मा ने इस जीवन में इसका सुंदर अनुभव किया है, ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, देह और देही, शरीर और आत्मा का अलग अनुभव होना योग का ही यथार्थ अनुभव है। जब आत्मिक स्थिति हमारी बनती है, भ्रकुटी के बीच में मैं चमकती हुई एक मणि, इस देहभान से हल्की लाइट माइट स्वरूप हूं, तो लाइट माइट स्वरूप में स्थित होते ही हम अपने बाबा के पास पहुंच जाते हैं, मेहनत नहीं लगती है, बाबा भी इसी स्वरूप में है। उसके स्वरूप को देखते और अनुभव करते हैं दिव्य नेत्र से, और उसकी शक्तियों का, उसकी किरणों का ऐसे अनुभव होता जैसे कोई किसी फुहारे के नीचे बैठा हुआ हो, उसकी शीतलता का, उसकी शक्तियों का, उसके प्रकाश का अपने आप अनुभव होता है। लेकिन वो स्थिति जब तक इस देह से डिटैच नहीं हुई, आत्मा जब तक इस देहभान से न्यारी नहीं हुई, तब तक उस यथार्थ योग की स्थिति का गहरा अनुभव नहीं होता। वैसे तो हम सब भिन्न भिन्न प्रकार से योग करते, योगी जीवन वाले बने हैं। बाबा कहते बच्चे योग लगाने वाले नहीं, दो घंटे चार घंटे वाले नहीं, आप तो निरंतर योगी हो, योगी जीवन है, सहज योगी हो, स्वतः योगी हो, कर्म योगी हो। तो स्वतः योगी, सहज योगी, कर्म योगी जीवन का अनुभव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन से बाबा के बने, तो बाबा ने जो हम सबको नई जीवन दी, अनेक बुराइयों से, अनेक व्यसनों से, अनेक बंधनों से, अनेक बोझों से लाइट बनाया। जो कुछ इस ब्राह्मण जीवन में बाबा का बनने के बाद हमें प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों के आधार से जब बाबा के प्रति प्यार इमर्ज होता है, तो उस प्यार में समा जाना ही यथार्थ योग है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, एक है दिल की याद, दूसरी है दिमाग की याद। कई लोग दिमाग से बाबा को याद करते हैं, लेकिन अनुभव में समाते नहीं हैं। दिमाग लड़ाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक शक्ति हूँ। लेकिन वो गहरा अनुभव होने लगे, बाबा के प्यार में आत्मा खो जाए, दुनिया की देह की सुध-बुध भूल जाए, वो अनुभव नहीं कर पाते। सिर्फ बुद्धि चलती रहती है, संकल्प चलते रहते हैं, गहरी शांति का अनुभव नहीं होता। इसलिए हम सबको कुछ समय अंतर्मुखता की गुफा में बैठना होगा, गहरा अनुभव करने के लिए। और कोई गुफा में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक भ्रकुटी बहुत अच्छी गुफा बाबा ने हम सबको दी है। और जब अंदर से आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होती है, अंतर्मुखी बन जाती है, तो अंतर्मुखी बन करके अपने भ्रकुटी की गुफा में बैठकर मैं और मेरा बाबा, बस इसके सिवाय और कोई याद नहीं रहता। संकल्प भी शून्य नहीं है। कई लोग समझते हैं कि योग के अंदर हमारे संकल्प बिल्कुल शांत हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तो उसको यथार्थ योग कहेंगे। लेकिन सहज राजयोगी आत्माओं को बाबा ने निर्संकल्प समाधि नहीं सिखाई है। हमारी निर्संकल्प समाधि नहीं है, निर्व्यर्थ और निर्विकल्प समाधि है। कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, एक ही शुद्ध संकल्प में अपने स्वस्वरूप में स्थित हो, स्वधर्म में स्थित हो, स्वदेश को देखें, स्वपिता को याद करें। यथार्थ योग के अंदर ये चारों अनुभूतियां स्वतः होने लगती हैं। एक स्वरूप का अनुभव होने लगता है कि मैं एक लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। स्वधर्म भी एकदम पवित्रता का, शांति का अनुभव होने लगता है। और स्वदेश को भी, अपने घर को जब तीसरे नेत्र से अनुभव करते हैं, तो उस परम धाम घर की शांति का भी अनुभव होने लगता है, उसकी शक्तियों का भी अनुभव होने लगता है। और बाबा के साथ, स्वपिता के साथ जब वो स्थिति बन जाती है, तो इस स्थिति को शक्तिशाली योग कहा जाता है, जिसके अंदर अनुभव के संकल्प होते हैं लेकिन सीमित होते हैं, गति उनकी फास्ट नहीं होती। शांति का अनुभव, प्यार का अनुभव, समाने का अनुभव कर आत्मा रही है, चैतन्य स्वरूप में है, अपने शक्तिशाली स्वरूप में है, लेकिन कोई दूसरे संकल्प इधर उधर के कार्य व्यवहार के, सेवाओं के, बीती बातों के और कोई संकल्प नहीं आते हैं। और ये स्थिति जिस आत्मा की अधिक समय रहने लगती है, उसकी कुछ निशानियां दिखाई देती हैं प्रैक्टिकल जीवन में। क्योंकि आत्मा जब इन कर्म इंद्रियों से डिटैच रहने का अभ्यास करती है, तो ये कर्म इंद्रियां शीतल होती जाती हैं, उत्तेजनाएं समाप्त होती जाती हैं, स्वभाव में सरलता आती जाती है, व्यवहार में मधुरता आती जाती है, वाणी बड़ी सम्मानजनक हो जाती है, स्थिति बड़ी न्यारी प्यारी हो जाती है। कोई भी प्रकार की स्थिति में हलचल नहीं रहती, निश्चिंत स्थिति हो जाती है। दादियों की स्थिति हम देखते हैं, इतनी बड़ी जवाबदारियां देश विदेश की होती हैं, बहुत सारे समाचार सब जगह के आते हैं, पढ़ती भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति पर उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता। बिल्कुल अचल, अडोल, एक रस, न्यारी प्यारी स्थिति है। अभी अभी समाचार पढ़ा और अभी अभी हम चले गए सामने, तो समाचार को जैसे भूल गए, उसका वर्णन चिंतन नहीं किया। उस पर स्टाप लगाया और जो व्यक्ति जैसा सामने आया उसके साथ वैसी ही रूहानियत, वैसी ही वार्तालाप, ये कौन सी शक्ति है। कई बार हमने अनुभव किया है दादियों के सामने जाते, कुछ समय पहले का दृश्य अगर पता चलता है कि ये था, अभी ये हो रहा था, थोड़े समय के बाद वो स्टेज चेंज हो जाती है, उसका चिंतन नहीं चलता है, जो हो रहा है सब ठीक है। कल दादी कह रही थी, ड्रामा हमको साक्षी बनाता है और बाबा हमको दृष्टा बनाता है। साक्षी दृष्टा स्थिति। ड्रामा कहता है बच्चे हर एक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखो, सब अपना अच्छा से अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, कोई में डिफेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। दृष्टा हो जाओ, संकल्प में हलचल नहीं आएगी। ऐसी स्थिति जब बनी है तब उनके योग के प्रकंपन से इतनी बड़ी सेवाएं हो रही हैं, यज्ञ निर्विघ्न चल रहे हैं, कोई भी प्रकार की बातें आती हैं समाप्त हो जाती हैं, वो योग के प्रयोग हैं। लेकिन उस गहरे योग में कुछ समय रहना होता है जीवन निरंतर योगी की, लेकिन बीच बीच में इस देह से बिल्कुल डिटैच होकर के एकदम अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर के सब संकल्पों को समेट करके जब मन और बुद्धि बिल्कुल स्थिर एकाग्र हो जाते हैं तो शक्तिशाली स्थिति बन जाती है। और वो शक्तिशाली स्थिति, उसका जो एक ओरा है, उसका जो एक आभा मंडल है, वो चारों ओर अपनी सेवाएं करता है, अपने आप करता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वातावरण को परिवर्तन करने के लिए, सकास देने के लिए, प्रयोग करने के लिए मैं कहीं उड़ के जाऊं, संकल्प करूं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर बल्ब बहुत पावरफुल है तो उसकी लाइट, उसकी किरणें, उसकी गर्मी अपने आप दूर दूर तक जाती है। हम अगर उस श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति में बैठते हैं, एक तरफ बहुत गहरी एकाग्रता है, स्थिरता है, हलचल नहीं है, जड़ता भी नहीं है, लेकिन बहुत मीठी वो स्थिति है योग की। और उस जब मीठी स्थिति में आत्मा एकदम मग्न हो जाती है तो जो बाबा की किरणें आती हैं, वो ज्ञान सूर्य की किरणें आती हैं, कोई भी संकल्प उठता है वो चारों तरफ वातावरण के अंदर फैलने लगता है, शांति के प्रकंपन। एक दिन की बात आपको मैं सुनाता हूं, मधुबन का वातावरण शाम को जब योग सब जगह चलता है 6:30 से 7:30 बजे तक, कोई भी आवाज नहीं होती, अधिकतर कोई भी बोलता नहीं, भले योग में बैठा हुआ किसी स्थान पर हो या न हो, लेकिन पूरे घर में जहां भी कुछ हो भी रहा होगा बहुत साइलेंस हो जाती है। तो एक दिन शाम के समय मैं एक ग्रुप को, यहां मेरा ऑफिस है, इधर रहता हूं, तो टीचर्स बहनों का ग्रुप आया था, तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा आप क्लास कराएं और कुछ हमें सुनाएं। तो यही शाम का नमाज शाम का समय था और हमारी बहुत अच्छी रूहानियत ज्ञान की चल रही थी, पूरा ग्रुप था, करीब 50 बहनें थी, और अचानक ऐसे सन्नाटा हो गया, बोलते बोलते कोई हिलता ही नहीं था। मैंने कहा क्या हुआ, ये जो एक प्रकंपन फैलते हैं साइलेंस के, जहां पर पवित्र आत्माएं तपस्या करती हैं, संगठित रूप में जहां एक ज्वाला जलती है, उसकी जो लाइट है, उसकी जो शक्ति है साइलेंस की, वो दूर दूर तक अपने आप जाती है, बहुत सेवा करती है, चुप हो जाती, बिल्कुल संकल्प शांत हो जाते। इस अनुभव को बढ़ाने की जरूरत है। हलचल में हम बहुत आते हैं, सेवाएं बहुत होती हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी शक्तिशाली स्थिति बन जाए, एकदम लाइट माइट संपन्न स्टेज बने, जो बाबा की वो लाइट अनुभव हो, ज्ञान सूर्य की किरणें अनुभव हो, और उन अनुभवों के आधार से ऐसे लगे चारों तरफ से सन्नाटा हो गया, एक जंगल की शांति का अनुभव किया होगा, एक शमशान की शांति का अनुभव किया होगा, एक किसी मंदिर में पवित्र स्थान की शांति का अनुभव किया होगा। जैसे जब आप लोगों ने शायद देखा हो, जब आरती होती है शाम के समय, मैं एक बार गया था हरिद्वार, तो गंगा की आरती शाम को हो रही थी। मुझे कहा गंगा की आरती जरूर देखनी चाहिए। मैं चलो, मुझे तो ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गया। आवाज थी, घंटे जोर जोर से बज रहे थे, लेकिन उन घंटों की आवाज में भी बड़ी शांति लग रही थी। एक तरफ गंगा की धारा झरझर झरझर आवाज में आ रही थी, दूसरी तरफ जोर से मंत्र उच्चारण करने के बाद घंटे बज रहे थे, और कई बहुत देर तक घंटे बजते गए, और हजारों लोग थे, एक दो नहीं थे, हजारों लोग थे। पानी के गंगा के किनारे कोई पैर डाल के बैठा था, कोई कहीं बैठा, कोई खड़ा हुआ था, आरती हो रही थी। उस शांति का भी मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया, उसमें भी बड़ा कुछ अलग अलौकिक अनुभव था उसका। एक बार मैं और एक स्थान पर जा रहा था, जंगलों के बीच में बहुत घने जंगल थे, मुझे कहने लगे भाई जी यहाँ गाड़ी रोकना ठीक नहीं होता, यहाँ कभी कभी हाथियों का झुंड आ जाता है, ये होता है। सबने कहा नहीं, मैंने यहाँ जंगल की शांति का अनुभव करना, 15 मिनट यहाँ खड़ा करो। वो शांति का अनुभव, जंगल में खड़ी कर दी गाड़ी, सब तरफ सन्नाटा था, कहीं दूर दूर से पशुओं की, जानवरों की, पंछियों की, जो कीड़े मकोड़े होते उनकी जी वो आवाज हो रही थी, लेकिन वो शांति अलग प्रकार की थी जंगल वाले। बाबा हम सबको कौन सी शांति का अनुभव करना चाहता है? डेड साइलेंस, ये शब्द बाबा ने चेंज कर दिया। पहले कहता था डेड साइलेंस का अनुभव करो। साकार बाबा कई बार कहते थे, जब छोटे हाल में घड़ी चलती थी तो उसकी टिक टिक होती थी, बच्ची को बंद कर दो, इसको हटा दो यहाँ से, घड़ी को कहता था बच्ची को हटा दो यहाँ से, आवाज करती है। घड़ी की आवाज भी बाबा को पसंद नहीं आती थी, बिल्कुल साइलेंस, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस। उस गहरी शांति का अनुभव किया है योग में? होता है यहाँ, किया है कि नहीं? सिर्फ कमेंट्री चलती रहती, कमेंट्री में तो फिर भी स्थूल में आवाज में आ जाते। मैं कभी कभी योग कराता हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई कमेंट्री मैं नहीं देता, उसमें हम भी आवाज में आ रहे हैं, आप भी आवाज में आ रहे हो, क्या अनुभव हो रहा है? चले जाओ गहरे, एकदम खो जाओ। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, समय तो ऐसे चला जाता है जो आप देखो पता चलता ही नहीं कहाँ गए, कहाँ बैठे थे। खो जाओ वो गहरी साइलेंस, योग की गहरी अनुभूति, उससे विकर्म विनाश होते हैं। संस्कार जो बाबा कहते हैं ना, चेंज हो जाएं। आप देखो कोई 20 साल 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इन संस्कार चेंज नहीं हुए, जैसे के तैसे। मुरली रोज सुनते हैं, योग रोज करते हैं, लेकिन जो परिवर्तन बाबा चाहता है, एकदम संस्कारों में शीतलता आ जाए, सरलता आ जाए, प्योर संस्कार हो जाए, अच्छे वाइब्रेशन हो जाए, उससे मिले लोग तो उसको कुछ अनुभूतियां अच्छी होने लगे, कि बहुत प्योर आत्मा है, बहुत निर्दोष आत्मा है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसा पावरफुल योग बीच बीच में हो, जो संस्कारों का संस्कार हो जाए, नहीं तो संस्कार चेंज नहीं होते, जल्दी नहीं चेंज होते, दब जाते हैं अच्छे संग से, अच्छे वातावरण से, पढ़ाई से, अच्छा भोजन करने से दबे रहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जैसे कहते हैं ना, बीज रखा था, संभाल के रखा, लेकिन जब उसको मिट्टी, धूल, पानी, कुछ भी उसका संग मिल गया तो उसमें अंकुर निकलने लगे। लेकिन अगर उस बीज को भून के रख दिया या जला दिया, काला करके ऐसे रख दिया, तो कितना भी हवा मिले, मिट्टी मिले, पानी मिले, उसके अंदर कुछ नहीं होता हलचल। बाबा भी हम सबको उस योग की अनुभूतियां कराना चाहते हैं जिससे ऐसे कोई विकारी संस्कार जो हैं, जो मुझे परेशान करने वाले हैं, मेरी स्थिति को डाउन करने वाले हैं, उस संस्कार एकदम संस्कार हो जाए। आधा कल्प के लिए तो बाबा कहता उसका नाम निशान भी नहीं रहेगा। योग भट्टी हम इसीलिए करते हैं, हमारा भट्टी का यही एम रहता है कि ऐसे जो पुराने संस्कार मुझे बीच बीच में परेशान करते हैं, उभर आते हैं, बाहर आ जाते हैं, हम ऐसी एकाग्रता का अभ्यास करें, ऐसा कुछ प्रयोग करें जो उन संस्कारों का संस्कार हो जाए, समाप्त हो जाए, फिर इमर्ज न हो। हम यहाँ 3 दिन भट्टी करके गए, बाहर के वातावरण में गए, उस संग में आए, और फिर वही वृत्तियां, फिर वही बोलचाल, फिर वही संस्कार, क्या योग किया? कहता हूँ क्या भट्टी किया, 3 दिन 4 दिन भट्टी करके समय व्यतीत किया, ठीक है, टाइम पास कर लिया, कुछ अच्छे अनुभव भी कर लिए, लेकिन वो अनुभव करके अपने संस्कारों को गला दिया जाए, वो संस्कार फिर से इमर्ज न हो, तब तो कहेंगे सच्चा योगी जीवन बन गया इसका। तो ऐसी कोई तपस्या की विधि, 3 स्टेजेज में आपको विधि के अंदर बताता हूं। एक ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठना है। सूर्य की किरणें बहुत बड़ा परिवर्तन करती, प्रकृति के सूर्य की शक्ति भी बहुत बड़ा चेंज करती। अगर ये कुछ दिन के लिए निकलना बंद हो जाए तो इस सृष्टि पर जीवन संभव नहीं है। ये प्रकृति के तत्वों में सूर्य की शक्ति बहुत बड़ा कार्य कर रही है। सवेरा होते ही ऑक्सीजन निकलने लगती, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देने लगते हैं, चारों तरफ से अंधकार दूर हो जाता, प्रकाश आने लगता है, रोशनी हो जाती है, पंछियों में आवाज आने लगती, चहल पहल होने लगती है, कहीं किचड़ा होता है वो भी अपना रूप बदलने लगता है, फूलों में फूल खिल जाते हैं, सुगंध फैलने लगती है, चारों तरफ ऑक्सीजन का प्रवाह। सवेरे का समय कितना ऐसा लगता है, क्या बढ़िया, कभी कभी जाओ यहाँ नकीले की तरफ, कहीं एकांत में चले जाओ, देखो जब सूर्य की किरणें निकल रही होती हैं सुबह सुबह, क्या उसका एक अपना आभा मंडल होता है। अगर थोड़े हल्के से बादलों के बीच में किरणें निकल रही हो तो कितना सुंदर लगता है, किरणें अलग अलग दिखाई देती है, रंग बिरंगी। ऐसी योग के अंदर ऐसी सुंदर अनुभूति की जाए, संगम का ये समय है, प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, टोटल समय वही है, सिर्फ अमृत वेले का समय नहीं, लेकिन ये टोटल संगम का समय है। और बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणें, वो लाइट मुझे आत्मा के ऊपर आ रही है, और वो किरणें ऐसे अनुभव करा रही हैं जैसे सारा प्रकृति संस्कार सब परिवर्तन हो रहे हैं। इस स्टेज का अनुभव करके देखो, बीज रूप बनने के बाद, आत्मा उस ज्ञान सूर्य की किरणें लेने के बाद तले में चली जाती, सागर के तले में चली गई, एकदम ऊपर हलचल है, लेकिन अंदर जब गया तो बिल्कुल शीतलता है, शांति है, हलचल खत्म, एकदम सागर के जैसे मैं तले में चला गया हूं, कोई हलचल है ही नहीं संकल्पों की। कुछ समय के लिए उस स्थिति में बैठ जाओ, कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं ये बार बार संकल्प क्यों करूं, हूं ना, बार बार सोचने की जरूरत है कि इसको मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो संकल्प भी समाप्त हो जाता है। बस एक लाइट हूं, एक माइट हूं, एक शक्ति हूं, बिल्कुल सागर के तले में चली गई। बाहर आई तो ज्ञान सूर्य की किरणें हैं और अंदर गई तो बिल्कुल शांति की एकदम शक्ति है। ऐसी अनुभूति के अंदर समा जाओ। फिर जब सेवा का कुछ संकल्प आता है तो जैसे मैं बीज बन करके पूरे वृक्ष को लाइट दे रही हूं, प्रयोग है एक। जैसे बीज से सारे वृक्ष को जल शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे मैं बीज रूप आत्मा इस पूरे वृक्ष को लाइट दे रही हूं, शक्ति दे रही हूं, उसका जल दे रही हूं। अगर उस स्थिति में एकाग्र हो गए और वो स्थिति में स्थित हो गए तो देने की जाने की कहीं जरूरत नहीं, प्रयोग और कुछ नहीं है। लेकिन एक उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, पवित्रता के, ज्ञान के, शांति के, आनंद के, प्रेम के, आत्मा सातों गुणों से संपन्न स्टेज में है। बीज माना क्या? बीज माना एक जड़ता नहीं है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। जब वो सातों गुणों से संपन्न बीज अपने बीज रूप स्थित में बैठता है तो पूरे वृक्ष को सातों किरणें प्राप्त होने लगती हैं। आप लोगों ने शायद यहां कैड में कभी भाग लिया हो, उनकी कैसेट सुनी होंगी जो हमारे कैड के प्रोग्राम हार्ट वालों के लिए चलते हैं। सातों गुणों का प्रयोग उसमें कराते हैं। आत्मा के सातों गुणों के आधार से शरीर के सातों अंग मुख्य जो हैं, उन पर उनका प्रयोग कराते हैं। कहते कभी कभी एक एक गुण का प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग ब्रेन पर करो, पवित्रता का प्रयोग चेहरे पर करो, शांति का प्रयोग फेफड़ों पर करो, प्यार का प्रयोग दिल पर, हार्ट पर करो, सुख का प्रयोग पेट के ऊपर करो, आनंद का प्रयोग हार्मोन्स के ऊपर करो, शक्तियों का प्रयोग हड्डी मांस इस पर करो। ये सात गुण जो आत्मा के हैं, अगर इन सातों गुणों को वैरायटी रूप में हम प्रयोग करते हैं तो ये शरीर भी एकदम शक्तिशाली बन जाता है, उसके रोग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत एकाग्रता और विश्वास की जरूरत है। विश्वास नहीं होता है, आप देखो जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ पता नहीं होता योग का, वो दो दिन तीन दिन योग करके प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और उनको 100% सफलता मिल जाती है। क्यों? भावना, विश्वास और एकाग्रता, उस आधार से वो निरोगी बन जाते हैं, उनको ऑपरेशन नहीं कराने पड़ते। कोई 20 साल से भी योग कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बीमारियां जाती नहीं और बढ़ती जाती है। क्या उनके अंदर है? कोई अलग प्रकार की विधि नहीं, लेकिन यथार्थ विधि को अगर कोई ने किया, सीख लिया, है बहुत बड़ी शक्ति, संकल्प शक्ति। असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन है विश्वास। अभी अभी एक बहन को मैंने योगिक खेती की बात बहन ने बताई, मैंने एक जगह भेजा था ट्रेनिंग देने के लिए। बहुत अच्छे प्रयोग कराती है, पांचों तत्वों का कैसे आवाहन करो, कैसे उनसे बातें करो, आपको कोई तत्व नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रैक्टिकल उसके अनुभव हैं। उस बहन ने जो योगिक खेती शुरू कराई अपने किसानों से, बहुत निश्चय और बहुत भावना है उसके पास। मैं उसको ट्रेनिंग के लिए भेजता हूं तो पांचों तत्वों का आवाहन कराती है, उनसे बातें करती है, जैसे कोई तत्व से कोई व्यक्ति से बात की जाती है ना ऐसे। तो कहती है मुझे सागर के किनारे ले गए, मैं आंध्रा में उसको भी भेजा था, अभी आई है वापस। तो कहती है सागर के किनारे पर मैं गई तो सागर की जो लहरें थी वो दूसरी तरफ ऐसे जा रही थी और मैं जिस बहन के साथ गई तो एक कोने में खड़ी हो गई, बहुत दूर की लहरें थी और उस तरफ जा रही थी। तो मैंने कहा, बहन को बोला, देखो मैं सागर से मिलने के लिए आई हूं और ये उधर लहरें जा रही हैं, हम प्रयोग करेंगे इस पर, ये लहरें हमारे पास क्यों नहीं आती, जरूर आएंगे। कहती मैं खड़ी हो गई उस बहन को लेकर के साथ में, हमने कहा हम धैर्य रखेंगे, शांति से आपको आह्वान कर रहे हैं। खड़ी हो गई ऐसे, उनको बहुत प्यार से पवित्रता की शक्ति कहने दी। कितना अच्छा सागर है, कितनी शांति है, कितनी शीतलता है, कितना अच्छा है। जैसे कोई महिमा करता ना ऐसे बात किया, मैं तुमसे मिलने आई हूं, तुम क्यों रूठा रूठा है, क्यों उधर जा रहा है, तुम मेरे पास नहीं आएगा क्या? खड़ी रही कि मैं धैर्य रखूंगी, तुमको मेरे पास आना है। जैसे कोई बात करता ना उसे, ऐसे बात किया उसके साथ सागर देवता के रूप में, कितना तुम सेवा कर रहा है, अगर तुम नहीं होता तो मानव जीवन नहीं होता, तुम्हारा कितना बड़ा रोल है इस सृष्टि के अंदर। ऐसे जैसे बात करते 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 कहता है मैं आधा घंटा ऐसे योग करती रही, दोनों बहनें, कोई तीसरा नहीं था, और थोड़ी देर के बाद आधा घंटा हुआ होगा, उसके बाद वो लहरें सारी आई और इतना भिगो के मेरे को चली गई, छू के चली गई। एकदम विश्वास हो गया उसको कि नहीं, मैंने जो आह्वान किया उसके आधार से हुआ है, क्यों नहीं आएंगी, प्रकृति के तत्व मुझे क्यों नहीं मदद करेंगे, ये तो मेरे लिए ही है ना, आत्मा के लिए है ना। लेकिन क्या हमने इन तत्वों की सेवा की है, इन पर प्रयोग किए हैं कभी? बाबा कहते हैं इनको आत्मा की सत्व प्रधान स्टेज से प्रकृति के तत्व चेंज होते हैं, ये दासी बन जाते हैं, अभी सबको परेशान कर रहे हैं। और कई किसानों के अनुभव हैं अभी अभी के, इस सीजन के मैं आपको बताऊं, भोले हैं सच्चे, इतना प्यार से सुनाते हैं, आंसू भराते हैं, कहते हैं भाई जी सारे यहां सभी खेतों पर ओले गिरे, इस साल ओले की इतनी बरसात हुई है जो पक्की फसल खड़ी फसल नष्ट हो गई लोगों की, लेकिन जहां हमने योग किया, जहां हमने बाबा का झंडा लहराया, उसको कोई ने नुकसान नहीं पहुंचा, एक ओला हमारे खेत में नहीं पड़ा है। क्या है ये, जादू मंत्र थोड़ी है ये, योग हमारा कोई जादू मंत्र है क्या? लेकिन एक ऊर्जा है, एक श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर तपस्या कर रहा है, योगी आत्मा है, प्रयोगी आत्मा है, तो कोई तत्व उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हलचल में आने की जरूरत नहीं है। कई प्रयोग हैं ऐसे, अगर आप देखेंगे भूकंप आए, बड़े बड़े भूकंप, कच्छ में जब भूकंप आया, तीन चार दिन के बाद हम लोग गए थे देखने के लिए, चारों तरफ बिल्डिंग्स गिरी हुई थी, एक भी बिल्डिंग नहीं बची थी, बड़ी मजबूत बिल्डिंग है, और बाबा का जो झंडा था वो बिल्डिंग में भले क्रेक थोड़ी थी लेकिन गिरी नहीं, एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी थी। क्या जादू था, कोई जादू है क्या, बाबा बचाने आया क्या? वो श्रेष्ठ संकल्पों की ऊर्जा थी, पवित्र संकल्पों की ऊर्जा है, वो प्रकृति की प्यार से सेवा हुई है, वहां प्रकृति के तत्वों का दोहन नहीं किया, उनको हम लोगों ने परेशान नहीं किया, उनको प्यार से स्नेह की शक्ति, शांति की शक्ति का दान किया है, तत्व नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? बाबा कई मूल्यां चला चुका है कि अगर मेरे तपस्वी योगी बच्चे किसी स्थान पर रहते हैं, तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, लेकिन उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, आएगी पैर छू करके वापस चली जाएगी। और कई सेंटर्स के अनुभव हैं जहां बाबा के योगी बच्चे तपस्या कर रहे हैं, जहां व्यर्थ और नेगेटिव नहीं है, जहां पर एकदम पावरफुल योग चल रहा है, वहां पर कोई भी प्रकृति का तत्व नुकसान नहीं पहुंचाता। सेवा हम कोई बोल करके नहीं कर रहे हैं, लेकिन योग के अंदर जब स्थित होते हैं तो ये जो प्रकंपन शांति के, प्रेम के, सुख के निकलते हैं, उससे इस वातावरण के अंदर ये प्रकृति के तत्व सबसे पहले ग्रहण करते हैं। हम इसको सिर्फ सुन लेते हैं लेकिन कभी प्रयोग करके नहीं देखते, करके तो देखें ये प्रैक्टिकल। आज कोई पौधा सूखा हुआ है, हमने पानी दिया उसको, हम उसे प्यार से देखें और बात तो करें कि तुम बहुत अच्छा है, बहुत मीठे फल आएंगे, अच्छे फल आएंगे, सबको सुख मिलेगा, भगवान को भोग लगेगा, बात तो करो उसे। ये आपकी भावनाएं, आपके अच्छे वाइब्रेशन प्रकृति के तत्व बहुत जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी नेगेटिविटी नहीं है। व्यक्तियों पर हम प्रयोग करते हैं तो उनके संस्कार हैं, उनके हिसाब किताब हैं, उनके स्वभाव हैं, उनके संस्कार हैं, उनमें थोड़ा समय लग सकता है। हमारी शुभ भावनाएं वहां तक पहुंचने में वो बॉर्डर है, वो दीवाल है। अब सूर्य निकला हुआ है, दीवाल आपने खड़ी की है, कहां रोशनी आएगी? वो दीवाल है नेगेटिविटी की। इसलिए कई आत्माएं हमारे वाइब्रेशन को कैच नहीं कर पाती हैं, बहुत योग करते नहीं बदलती हैं, फिर भी बाबा कहता छोड़ो नहीं, आपकी शुभ भावनाएं कहीं ना कहीं से काम करेंगी। लेकिन प्रकृति के तत्वों के पास तो कुछ नेगेटिविटी नहीं है। आप उनसे प्यार से बातें करो, बहुत स्नेह से आकाश देवता का आवाहन करो। जब दादी जी ने शरीर छोड़ा था ना, तो एक संदेश आया था। बाबा ने कहा दादी प्रकृति पति थी, प्रकृति जीत थी, और जब इसने शरीर छोड़ के वतन में आने लगी तो सब तत्व देवता के रूप में दादी जी को फूल माला पहनाने के लिए आए सामने, स्वागत करने के लिए कि अभी हमारी मालिक आई है, जो ऑर्डर करेगी मैं मानेंगे। ये संदेश आया था पहले पहले, और वो सभी तत्व देवता के रूप में माला लेकर के खड़े थे। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी, इन पांचों को आप ऐसे अपने सामने इमर्ज करो देवता के रूप में 10 मिनट। बाबा की ऐसी किरणें लो साइलेंस की, मेरे ऊपर आएंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर के उनको शांति दे रही हैं, उनको शक्ति दे रही हैं, उनको पवित्रता का वाइब्रेशन दे रही हैं। तत्वों की सेवा करो, प्रयोग करो, तो ये तत्व आपको कभी दुखी नहीं करेंगे। शरीर पर प्रयोग करो, ऑर्गन्स पर प्रयोग करो। कोई ऐसे बहुत कड़े संस्कार हैं जो नहीं जा रहे हैं, कुछ समय बैठ करके उस पर प्रयोग करो। थको नहीं, कई थक जाते, हमने तो इतने दिन कर लिया, 21 दिन कर लिया, 12 दिन कर लिया, 15 दिन कर लिया, फिर भी कुछ तो होता नहीं है। कई लोग ऐसे कह दे कुछ तो होता तो है नहीं, शायद हमारी भावनाएं ऐसी हैं। बाबा तो होता नहीं, तुम्हारा समय तो सफल होता है, इच्छा रख करके क्यों कर रहे हो? बहुत बेहद की दृष्टि, बहुत बेहद की भावनाएं रख करके एकदम गुफा में बैठ करके तले में चले जाओ। तीन चीजें, अंतर्मुखी बन जाओ, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे आ जाओ, और रहम दिल की भावना को धारण कर लो। बहुत शुभ भावना, शुभ चिंतक, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी गति हो, सब मुक्ति को पाए। बहुत शुभ भावनाओं से संपन्न बन करके जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो उसकी जो लाइट है, उसके जो प्रकंपन है, उसके जो वाइब्रेशन है, वो चारों तरफ अपने आप फैलते हैं, और जिसको जो ग्रहण करना वो ग्रहण कर लेता है। कोई लिमिट नहीं है कि मैंने इसको योग करना, इसको दान देना, इसको देना है। बाबा कहता क्यों हद रखते हो, अगर तुमको किसी संबंधी को भी देना है चलो उसको मेरे सामने इमर्ज कर दो, फिर तो तुम बाबा की याद में बैठो। संबंधी को याद तो नहीं करना है ना, भाई फलाने हमारे आगे रुकावट हैं, या फलाने बीमार हैं, फलाने बहुत अच्छे हैं, उनको हमें मदद करनी चाहिए, योग करो, हम उनके लिए करते हैं। तो ये तो विधि नहीं है कि उसको ही हम याद करते रहें, बाबा को भूल जाएं। विधि क्या है, जैसे आज डॉक्टर के पास किसी पेशेंट को हम ले जाते हैं तो कहता तुम लिख दो मुझे कि अगर ये कुछ हो गया तो इस पर कुछ नहीं करेंगे केस, तो मुझे दे दो लिख करके, फिर डॉक्टर की जवाबदारी, आप लोग भगवान को याद करो। हम उनको लिख के दे देते हैं, कुछ भी करो आप, चीरो फाड़ो कुछ भी करो, आपका है ले जाओ। डॉक्टर के पास गया फिर हम उसको याद करेंगे क्या, क्या हो रहा होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए? उस समय भगवान को याद कर, भगवान जो होगा अच्छा होगा। यही योग के प्रयोग में भी हम करते हैं कि कोई भी आत्मा अगर जरूरत पड़ती, इसको हमें शांति का दान देना है, शक्ति का दान देना है, पवित्रता का दान देना है, तो उस आत्मा को हम बाबा के आगे इमर्ज कर देते हैं। बाबा ये आपका बच्चा है, आपसे शक्ति मिले इसको, हमारी शुभ भावना है, ये ठीक हो, विघ्न खत्म हो जाए। संकल्प पूरा किया, बाबा के हवाले किया और हम बैठ गए बाबा के हाथ। बाबा से हम शक्ति ले रहे हैं, वो शक्ति अपने आप वातावरण में फैल रही है, उस व्यक्ति को हम याद नहीं कर रहे हैं। उसकी बार बार स्मृति अगर आ रही है, माना मेरा योग ठीक नहीं है, प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग करने के लिए मुझे बाबा के साथ कनेक्ट होना है, मुझे बाबा की शक्तियां लेकर के बहुत रहम दिल की भावना से बैठना है। कोई संकल्प ना है क्या होगा कैसे होगा, कई बार हमारे ही नेगेटिव संकल्प वहां पहुंच करके उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए कभी नेगेटिव संकल्प नहीं करो। कई लोग नेगेटिव संकल्पों का आह्वान कर लेते हैं, होती होने वाली कोई बात नहीं लेती, लेकिन सोच सोच करके उस दृश्य को इमर्ज करते हैं और घट जाती है आकर के। फिर कहते ऐसा क्यों हो गया, तुमने आह्वान क्यों किया इसका। अभी एक जगह मैं भट्टी कराने गया था, क्लास करा रहा था, क्लास करा के पूरा कि हमने कोई कुछ पूछना है किसी को, तो एक माता खड़ी हुई बहुत भावना से, कहती भाई जी मेरा योग नहीं लगता है। मुझे हंसी आई, हमने कहा योग नहीं लगता, इतने दिन देर मैंने योग की भट्टी कराई, क्लास कराया, और मैं क्लास ऐसा कराता हूं तुम्हारा योग क्लास में ही लग जाए, योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है बताओ, कहती पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन 2 साल हो गए मेरे पति ने शरीर छोड़ा था, 1 साल तो मैं बहुत सदमे में रही, बहुत दुख रहा, फिर मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो मैंने सोचा इसको मैं पढ़ा दूं, इसको होशियार बना दूं तो बाप की सीट संभाले, लेकिन जब मैं उसको स्कूल भेज देती हूं तो मेरे इतने संकल्प चलते हैं कहीं इसका अपहरण कोई न कर ले, कहीं ये गलत संग में न चला जाए, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, मुझे बार बार वो संकल्प बहुत परेशान करते हैं। जब तक फिर से वापस नहीं आता और मैं नहीं मिलती हूं तब तक मैं बेचैन हो जाती हूं। मैं भेज तो देती हूं उसको, लेकिन भेजने के बाद मुझे वही संकल्प बार बार खचोड़ते, पति भूल गया लेकिन बेटा जो एक है मैं समझती हूँ ये अच्छा हो बड़ा हो वो तो संकल्प है, लेकिन बार बार ये आता है कहीं इसका कोई अपहरण न कर ले, कोई इसको मार न दे, कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कोई गलत संग में न चला जाए, बस वो संकल्प मुझे परेशान कर देते। हमने कहा ये संकल्प करके तुम अच्छा उसके लिए कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, ये अच्छा है या बुरा है। इस प्रकार के संकल्प परिवार के सदस्य अगर हैं, प्यार है तो प्यार का ही कारण ये तो रिजल्ट नहीं होनी चाहिए कि हम ये सोचते रहे कोई मर न जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं संग दोष में ना जाए। क्यों सोच रहे हो गलत, आप जो संकल्प कर रहे हो ये संकल्प उसको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, ये गलत प्रयोग है। आप संकल्प करो ये भगवान का बेटा है, मैं भगवान की बच्ची हूं, भगवान इसके ऊपर छत्र छाया के रूप में है, ये उसका है, इसके ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बहुत पॉजिटिव संकल्प करो ना, ये उसके कार्य में मदद करने वाला है, तो अगर अच्छे संकल्प दोगी तो सेफ रहेगा। अगर नेगेटिव संकल्प करोगे तो आज नहीं कल तो कुछ न कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके संकल्पों से ये नेगेटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, उसके मार्ग में रुकावट पैदा कर रहे हैं। हम सब प्रयोगी बने, लेकिन प्रयोग में संकल्पों की क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे संकल्प जो लोगों का नुकसान कर दे, भला के बजाय उसका बुरा हो जाएगा। आत्माएं हम पवित्र स्वच्छ बन रही हैं, शुद्ध बन रही हैं, शुद्ध और पवित्र आत्मा के पास बहुत बड़ा बल होता है, अपने आप में बल है। इसलिए बाबा कहता है तुम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो, और सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अगर सिद्ध होने लगे और हमारे संकल्पों की क्वालिटी अच्छी न हो तो हो सकता है कि वो कहीं न कहीं नुकसान कर दे, किसी न किसी को श्राप दे दे। इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं करना परिवार के किसी सदस्य के प्रति, ये तो सुधारने वाला ही नहीं है, ये तो बदलने वाला ही नहीं है, ये तो है ही राक्षस। ऐसे ऐसे संकल्प करके उसकी वृत्तियों को और हम राक्षस जैसा बना रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जरूर बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा, हट्टी तो एक ही है, भगवान सबको गति सदगति देने वाला है, कहां जाएगा। प्रयोग करो ना, शुद्ध संकल्प करते करते हमारी अच्छी भावनाएं, कई माताओं की इतनी अच्छी भावनाएं होती हैं, कितने विघ्न पति लोग डालते हैं, पवित्र नहीं रहने देते हैं, बहुत रुकावट डालते हैं, क्लास में आने नहीं देते, लेकिन जो भावना वाली होती है कुछ भी हो जाए मैं तो बाबा की हूं, निश्चय हो गया प्रयोग करना शुरू कर देती। एक माता मेरे से कहती भाई सी टोली दे दो, हमने कहा कौन सी टोली, टोली मेरे पास दिल खुश कर, दिल खुश नहीं देना, उनको तोसा दे दो, ठीक है चले जाओ, क्या करेंगी तुम? कहती मेरी पति को मैं टोली जब देती हूँ तो फेंक देता है, खाता नहीं, कि जादू होगी इसके अंदर, मैं प्रयोग करूंगी। मैं क्या करेगी? कहती मैं जाऊंगी, मैं चाय बनाऊंगी ना तो तोसा उसमें डाल दूंगी, चाय पिएगा ना तोसा उसके पेट में जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। भावना कैसी है? कैसे भी बाबा का घर का एक कणा दाना खाएगा ना तो उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे, और उस भावना से लेते लेते ऐसे प्रयोग करते जाते हैं, ये योग के ही प्रयोग है ना, और उस भावना से व्यक्ति के विचार शुद्ध हो जाते हैं, सहयोगी बन जाता है। कुछ समय लगता है, टाइम लगता है, लेकिन आ जाते हैं बाबा के ज्ञान में। कहते हैं तो गुरु है, ये तो बहुत अच्छे मार्ग पर है, विघ्न खत्म हो जाते हैं। डर गए, घबरा गए, क्या करूं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नेगेटिव सोचते रहे तो सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए नेगेटिव सोचना ही नहीं है, बाबा के बच्चे सबको सुधरना है। बाबा का ठेका तो मैंने लिया है ना सुधारने का, तुमने थोड़ी लिया है। जब मेरा ठेका है तो मैं सुधारूंगा, तुम सिर्फ शुद्ध संकल्प करो, तुम मेरे सहयोगी बनो, कोई नेगेटिव संकल्प नहीं करो, ये बदलेगा नहीं, ये सुधरेगा नहीं, यही ऐसा, इसके बड़े कड़े संस्कार। कई दूसरों के पर नहीं सोचते, अपने लिए सोचने लगते हैं। क्या सोचते हैं? मेरे तो बहुत कड़े संस्कार है, मैं इतना योग करती हूँ फिर भी देखो सुपन गलत आ जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरे संकल्प इधर उधर के आ जाते हैं। अरे बाबा कहता है दर्पण के आगे जाओगे तो कुछ तो दाग दिखाई देगा कि नहीं दिखेगा? आप दर्पण के आगे आए हो, बाबा के कमरे में गए हो, योग में बैठे हो, आप दर्पण के सामने हो तो आपकी कमियां आपके सामने आएंगी। क्यों सोच रहे हो मेरी ये कमी है? ठीक है, दाग मिट जाएगा ना, दिखाई दिया, महसूस किया, परिवर्तन हो जाएगा। अब सोच सोच करके कोई निराश हो जाता, कोई उदास हो जाता, छोटी दिल कर लेता, अब क्या करूं, अब क्या करूं। बाबा कहता है तुम अपने दाग को मिटाने की बजाय उस दाग को बढ़ा रहे हो, मिट जाएगा। आप बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करो, बस आ रहे हैं इधर के संकल्प, उधर के संकल्प विकल्प आ रहे हैं, आएंगे। बाबा कहता है जब बैठे हो, मैं दवाई दे रहा हूं तो वैद्य लोग दवाई देते हैं तो बताते हैं कि दवाई ऐसी है जो अंदर की बीमारी होगी बाहर आएगी, डरना नहीं। ऐसे नहीं बाहर आ गई देख करके और दवाई दूसरी ले लो, कहीं होते ना एक दवाई से कोई बाहर दिखाई देती डर जाते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उसने और दबाने की दवाई दे दी, एक ने बाहर निकालने की दवाई दी, दूसरे ने दबाने की दवाई दे दी, क्या होगा? और रोग हो जाएगा, एक का दूसरा हो जाएगा। इसलिए धैर्यता से, शांति से, बाबा मेरी सब कमियों को निकालने के लिए आया है, मुझे ही देवता बनाएगा और दूसरा कोई बनने वाला नहीं है, कोई दूसरा आएगा क्या? और जब मुझे ही बनाएगा तो कैसे भी मारपीट करके तो बनाएगा ही ना। जब वही बनाने वाला है, हम उसके बच्चे हैं, हम नहीं बनेंगे तो कोई दूसरा आएगा क्या बनने के लिए? इसलिए कभी भी साधारण संकल्प नहीं करो। ऐसा संकल्प आता है, ऐसे स्वप्न आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? बाबा कहते हैं सब संकल्पों को ब्रेक लगा दो, बस अपने अंदर बहुत शुद्ध संकल्प करो, मैं तो पवित्र आत्मा हूं, मैं तो देव आत्मा हूं, मैं तो महान आत्मा हूं, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। खुशी और नशे के अंदर रहो और बाबा की शक्ति लो, नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी को सोचो नहीं, उसको सोच सोच करके बड़ा रूप नहीं दो, लेकिन उसको बदलने के लिए, समाप्त करने के लिए पॉजिटिव को इतना बढ़ा दो जो नेगेटिव दब जाए। यही प्रयोग है और कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन हम नेगेटिव बातों को सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, ऐसा हो गया। कहीं क्लास में अगर मैंने प्रश्न छेड़ दिया, पूछने लगे, तो मैं कहता हूं जैसे मक्खियों को उड़ाया जाता है ना, ऐसे मक्खियों के जैसे प्रश्न पर प्रश्न आने लगते, भाई जी ये होता, ने कहा इनसे पूछ दिया मैंने, ये होता है। सबकी दवाई एक ही है, जैसे वो पहले जमाने में एक ड्राप आता था, उसको कहते थे अमृत धारा, सब दवाइयों की एक ही दवाई है। पेट दर्द है, अमृत धारा की दो बूंद खा लो, सिर दर्द है, अमृत धारा लगा लो, ये हुआ ये कर लो, अमृत धारा सब बीमारियों की दवाई। बाबा कहता सब बीमारियों की दवाई योग, कोई भी प्रश्न का हल बाबा के पास योग है। एक ने पूछा बाबा मुझे नींद नहीं आती, बाबा ने तुम योग में बैठ जा नींद आ जाएगी। बाबा मुझे बहुत योग में नींद आती है, बाबा कहता अच्छा कोई बात नहीं, अपने समान में स्थित होकर बाबा को प्यार से याद कर नींद भाग जाएगी। बहुत नींद आती है तो भी दवाई योग ही है, और नींद नहीं आती है तो भी दवाई योग ही है। जब योग ही दवाई है, हमको सबको पता है, तो प्रयोग करो ना। शक्ति तो बाबा ने आपको दी है, भावना भी है, प्यार भी है, विश्वास भी है। बस बाबा के प्यार में खो जाओ, बाबा की शक्तियां लो, और जिस प्रकार की बीमारी उस पर प्रयोग कर दो। लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं, कंप्लेन बहुत करते हैं, ऐसा है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। बाबा तब वो अभी सब समाप्त करके शांति की शक्ति को धारण करो, एकाग्र मन से अंतर मुक्ता की गुफा में बैठ करके शुभ चिंतक बन करके बाबा की किरणों को ऐसे लो जैसे कोई लाइट ऊपर से मेरे ऊपर आ रही है और वो किरणें अपना काम कर रही है। अब कांच के ऊपर देखो सूर्य की किरण आती है, कैसे कांच साफ है, स्वच्छ है, सूर्य की तरफ है, रिफ्लेक्ट हो जाती है तो कई गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है। किरण वही है लेकिन कांच के थ्रू उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई, भाप बन गई, स्टीम बन गई, बैटरी चार्ज हो गई, पंखे चलने लगे, भोजन बनने लगा, सोलार क्या है। अगर हम ज्ञान सूर्य बाबा की ऐसी किरणें मन के ऊपर लें, स्वच्छ मन पर, कोई सी ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं, बदले की भावना नहीं, बहुत पवित्र स्वच्छ मन है, ये साफ स्वच्छ दर्पण है, बैठ जाओ बाबा के पास, आएंगी सूर्य की किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट करेंगी, अपने आप दूसरी तरफ जाएंगी। जिधर सोचोगे इस आत्मा का भला हो जाए, इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये परिवर्तन हो जाए, संकल्प उठेंगे और वो किरणें काम करेंगे, ये प्रयोग है। ठीक है, तो ऐसे प्रयोग करो। हम खेती पर और कुछ नहीं सिखाते हैं, कहते ऐसे प्रयोग करो, तुम कीड़े लग गए क्यों दवाई डाल रहे हो, बैठो ना बाबा की याद में 2 बजे उठ के भाग जाएंगे, हाय हाय नहीं करो, शांति से बैठो, शांति से प्रयोग करो। प्रयोग करके अगर सफलता नहीं मिलती है, कोई बहुत कोई ऐसी कारण बनते हैं तो दवाई है ऑर्गेनिक, लेकिन तुम प्रयोग तो करो पहले, पहले ही दवाई डाल दिया करके हमारे प्रयोग क्या हुए। इसलिए जब हम योगिक खेती की ट्रेनिंग देते हैं तो उनको हम पांचों तत्वों को पहले पावन बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, उनका आह्वान करने की, पानी की जरूरत है बोलो पानी के तत्व को आओ यहां जरूरत है, अपने आप बरसात पड़ेगी समय पर, लेकिन उनका आह्वान करके उनसे प्यार से बातें करके उसकी सेवा में लगाओ उनको, तो ये बहुत सुंदर प्रयोग है और अच्छी सफलता भी है। 99% लोगों ने जहां पर योगिक खेती की है कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, फर्टिलाइजर के प्रयोग से भी अधिक खेती अच्छी हो रही है, उसकी क्वालिटी बढ़ गई, वो योगी खुद बन गया, उसके खेत अपने आप शक्तिशाली हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत अच्छी रिजल्ट चारों तरफ से है, लेकिन खेती जिसके पास नहीं ऐसा नहीं है हमको प्रयोग नहीं करने हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, कहीं प्रकृति पर प्रयोग है तो कहीं संस्कारों पर प्रयोग है, कहीं व्यक्तियों पर प्रयोग है, तो सब पर प्रयोग करके योगी के साथ प्रयोगी बन करके जाना। ठीक है, भट्टी के अंदर योगी नहीं सिर्फ प्रयोगी, तो जो कुछ शक्तियां जमा होंगी अपने आप परिवर्तन लाएंगी। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट के लिए आज सुरेंद्र भाई आओ, भले आ जाओ योग करके फिर जी 5 मिनट योग। अच्छा तो कैसे बैठेंगे अभी सभी, अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, आसन कितना बढ़िया बाबा ने दिया है, लाइट माइट संपन्न मैं आत्मा एक बहुत चमकती हुई मणि इस भ्रकुटी पर विराजमान हूँ, देह से अलग मैं एक शक्ति हूँ, मैं ज्योति पुंज हूँ। पहले अपने स्वरूप का अनुभव करो और उस स्वरूप का अनुभव करते करते एकदम लाइट बन करके जैसे मन बुद्धि के विमान से मैं बाबा के पास गई और बाबा की सब किरणें मेरे ऊपर डायरेक्ट आ रही है, उन किरणों के नीचे बैठ करके मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ इसका अनुभव। पलकें उठा के निहारा
इतनी अच्छी, इतनी शक्तिशाली क्लास सुनने के बाद तो अनुभव का मौका है, बोलने का नहीं। भाई साहब ने अपनी वाणी से हम सबको वाणी से परे कर दिया। महसूस हो रहा था शब्दों में शक्ति किसको कहा जाता है, ये आप सबने महसूस की होगी। एक शब्द मुख से बोले जाते हैं, एक शब्द जब दिल से निकलते हैं, अनुभूति के साथ निकलते हैं, तो उन शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। पूरी ही क्लास क्लास नहीं थी, साथ में योग उसके अंदर मर्ज था, अनुभूतियां उसमें मर्ज थी। जितनी भी स्थितियां आपने क्लास के अंदर बताई वो सारी हमने प्रैक्टिकल में महसूस करते जा रहे थे, उस स्वरूप में हम टिकते चले जा रहे थे। ये है बाबा कहते ना, बाबा की याद में बोलो तो तीर लगेगा, वो आपने महसूस किया होगा। धन्यवाद करके, भाई साहब का धन्यवाद करेंगे एक हाथ की ताली से।